मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। एफआईएस के आज 30 मार्च 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे ठीक पहले वाले डेली ऑडियो लेक्चर में हम लोगों ने जैव विविधता अधिनियम 2002 विषय की शुरुआत की थी और उसके तहत इस एक्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल की थी और खासकर उसके उद्देश्यों के बारे में थोड़ी सी विस्तार से हम लोगों ने बातें की थी ताकि इसका जो बेस है इस अधिनियम का वह आपके दिमाग में स्पष्ट हो जाए। लेकिन जैसा कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में जनरली प्रश्न पूछे जाते हैं, बेस से तो आप उलझन से अपने आप को बचा सकेंगे, मतलब यदि आपकी बेस पर पकड़ हो गई तो यूपीएससी जो आपको फंसाने की कोशिश करेगा, उलझाने की कोशिश करेगा, आप उससे बच निकलेंगे। लेकिन इनफैक्ट जो प्रश्न पूछे जाते हैं या जिसके माध्यम से आपको उलझाने की कोशिश की जाती है वो प्रावधान ही होते हैं। प्रावधान का मतलब है कि उस एक्ट में क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, ठीक है। तो इसलिए मुझे लगा कि नहीं, प्रावधानों के बारे में भी कुछ न कुछ आपको बताया ही जाना चाहिए। तो मैं अब आपको जो अधिनियम 2002 का है उसके जो प्रावधान है, जो बहुत इम्पोर्टेंट जो प्रोविजंस हैं, उन प्रोविजंस के बारे में दोस्तों बताने जा रहा हूं। तो आइए अब इसके कुछ प्रोविजंस को देखें। पहला यह है कि जो सबसे बड़ी जो बात की गई वो ये कि राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर या कह लीजिए केंद्र सरकार के स्तर पर एक प्राधिकरण का गठन किया गया, अथॉरिटी का गठन किया गया और इसे नाम दिया गया राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी, NBA। ये आपको रट जाना चाहिए, मेन एग्जामिनेशन में भी ये आपके काम आएगा। जैव विविधता की दृष्टि से ये हमारी अपेक्स बॉडी है, सबसे महत्वपूर्ण संस्था है, राइट। आइए चलते चलते संस्था के जो उद्देश्य हैं थोड़ा सा उसे भी देख लेते हैं, क्योंकि संस्था का उद्देश्य कहीं ना कहीं सीधे सीधे हमारे जैव विविधता के संरक्षण से जुड़ा हुआ है और इसका संबंध चूंकि जैव विविधता से संबंधित जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उससे भी जुड़ा हुआ है और इससे संबंधित प्रश्न मुझे ध्यान आ रहा है कि एक साल पूछा भी गया था, तो इसकी जानकारी देना थोड़ा सा बेहतर होगा। देखिए तो ये जो NBA है, जो प्राधिकरण है, इसके क्या उद्देश्य है। नो डाउट कि जो जैव विविधता से संबंधित जो हमारा ज्ञान है, जब हम यहां ज्ञान कह रहे हैं तो वो स्थानीय समुदाय का ही ज्ञान है, उसे संरक्षित करना। जो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्राधिकरण का काम, उद्देश्य कह लीजिए, वह यह है कि आनुवंशिक यानी कि जेनेटिक और जैविक संसाधनों, जो हमारे यहां वनस्पति और जीव जंतु के जो रिसोर्सेज हैं, से संबंधित बौद्धिक संपदा हेतु आवेदनों को अनुशंसित करना है। सबसे बड़ा काम है। जैसे मान लीजिए कि किसी को लगता है कि मैंने इस बारे में कोई नई खोज की है, इस वनस्पति के बारे में, इस पशु के बारे में, इस तत्व के बारे में, तो उस पर वह इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट चाहेगा, है ना, पंजीकृत कराएगा कि ये मेरा ज्ञान है और इसे पंजीकृत किया जाना चाहिए। देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपका अलग से सिलेबस में है ना, वो आप जानते ही होंगे, नहीं तो आपको जानना चाहिए, है ना, उसके विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा। तो आप उस पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहेंगे, उस पर अधिकार जताना चाहेंगे, तो ये जो बॉडी है, जो प्राधिकरण, वही आपके एप्लीकेशन को रिकमेंड करेगी। अगर ये रिकमेंड नहीं करेगी तो उस पर आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं मिल सकता, उस पर आपको अधिकार नहीं मिलेगा। तो सीधी सी बात है कि इसका कितना बड़ा नियंत्रण है, आप देखिए। इसी को थोड़ा सा विस्तार से देख लेते हैं, क्योंकि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंडिपेंडेंट टॉपिक भी है, लेकिन यहां कुछ और भी व्यवस्थाएं की गई हैं कि यदि कोई भारतीय नागरिक या संगठन, यानी संगठन का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन या कोई वाणिज्यिक कोई इंडस्ट्री ही है, उपयोग के लिए जैविक संसाधनों का आयात करना चाहता है, उसका उपयोग करना चाहता है, वो इंपोर्ट करना चाहता है, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट नहीं है तो, लेकिन आयात करना चाहता है क्योंकि वो हमारे यहां की जैव विविधता का उपयोग करना चाह रहा है, तो ऐसे ही नहीं उपयोग कर लेगा। देखिए वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए कुछ नहीं कर रहा है, वो जस्ट इंपोर्ट करना चाह रहा है एज अ रॉ मटेरियल, तो उसकी भी सूचना उसे प्राधिकरण को देनी होगी। अगर वो बिना सूचना के चीजें आयात करने लगेगा तो वो अवैध हो जाएगा। और फिर जब इस प्राधिकरण को सूचना मिलेगी तो अगर प्राधिकरण को लगता है कि इस आयात से तो जैव विविधता के संरक्षण को कोई नुकसान नहीं होगा, हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो थ्योरी है वो ज्यों की त्यों बनी रहेगी, और इसके आयात करने से उस संगठन को जो लाभ मिलेगा उस लाभ का वितरण भी हमारे लोगों को होगा, यानी कि उसका कुछ ना कुछ लाभ हमारे लोगों को भी होगा, तब तो ठीक है। और अगर उसे लग रहा है कि नहीं, इनमें से कोई बात नहीं हो रही है, तो बकायदे वह आयात को रोक सकता है। यानी कि अगर आप कोई वस्तु आयात भी करना चाह रहे हैं तो उस पर भी प्राधिकरण की अनुमति चाहिए। तो दोनों स्थितियां हो गई, रॉ मटेरियल और साथ ही साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो आप देख रहे हैं कि यह प्राधिकरण कितना मायने रखता है। लेकिन एक व्यवस्था की गई है, यह व्यवस्था हमारे अपने लोगों के लिए है, स्थानीय लोगों के लिए है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, यह भी आपको जानना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ वैद्य हैं, हमारे यहाँ हकीम हैं, हमारे यहाँ स्थानीय लोग हैं, समुदाय हैं। आप अगर आज ग्रामीण जंगल के क्षेत्रों में चले जाएं तो वहाँ बहुत से ऐसे समुदाय हैं जो वहाँ की वनस्पतियों का उपयोग औषधि के रूप में करते हैं। मुझे बहुत अच्छे से याद आ रहा है कि जब मैं गांव में था तो जब किसी की हड्डी टूट जाती थी तो वहाँ जो कुछ लोग थे जो इस तरह के काम करते थे वो बकायदे जंगल में जाते थे और जंगल से एक लता लेकर के आते थे, बेल जिसे आप कहेंगे, हड़जोड़वा, उसका नाम ही था हड़जोड़वा। वो लोग अपनी भाषा में हड़जोड़वा कहते थे, हड़ का मतलब है हड्डी, जोड़वा का मतलब है जोड़ देने वाला, कि हड्डी को जोड़ देने वाला। वो लेकर के आते थे, बकायदे उसका पेस्ट बनाते थे, पेस्ट बना करके वो बकायदे हाथ में बांध देते थे उस पेस्ट को, और कुछ दिनों के बाद हड्डी जुड़ जाती थी। तो आज भी बहुत से ऐसे समुदाय हैं जो इनका उपयोग औषधि के लिए कर रहे हैं, और कुछ हमारे ऐसे भी लोग हैं, चाहे हकीम हों, वैद्य हों, या कुछ इंटेलेक्चुअल्स हो सकते हैं, जो शोध कार्यों के लिए बकायदे इनका उपयोग करते हों। तो अगर हमारी वो भारतीय हैं और वैद्य हैं, हकीम हैं, स्थानीय समुदाय हैं या शोध छात्र हैं, तो वो इसको करने के लिए स्वतंत्र होंगे, उनके लिए फिर जरूरी नहीं है कि वो प्राधिकरण की अनुमति लें। तो आप देखिए कि कैसे बहुत अच्छे तरीके से रास्ता तैयार किया गया है ना। अगर आप उसका व्यावसायिक उपयोग करेंगे या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में भी आप व्यावसायिक उपयोग ही करेंगे तो वो प्रतिबंधित है, उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन शोध तो एक अच्छी बात है ना, आप उसको इन्हेंस करना चाह रहे हैं, या हमारे जो स्थानीय लोग हैं, हमारे जो हकीम वैद्य हैं, अगर वो इसमें कुछ भी इसका लाभ लेना चाह रहे हैं तो वो लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। ये आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। देखिए और क्या व्यवस्थाएं की गई हैं कि राज्यों के स्तर पर, केंद्र के स्तर पर हमने देख लिया, राज्यों के स्तर पर बकायदे राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन किया जाएगा, स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड SBB गठन हो चुका है। और यहां तक कि स्थानीय निकायों में जैसे पंचायत है, नगर निगम है, अगर उस क्षेत्र में ऐसी विविधताएं हैं तो वहां भी बकायदे बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी गठित की जाएंगी। बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, जैव विविधता प्रबंधन समितियां। अब आप देखिए राष्ट्रीय स्तर से लेकर के हम स्थानीय निकायों तक पर संगठन बना रहे हैं, और जो राज्य के जो बोर्ड होंगे, अब केंद्र तो देखिए अपने हाई लेवल पर काम करेगा, जो राज्य के बोर्ड होंगे उनकी यह जिम्मेदारी होगी कि ये जो नीचे स्तर पर जो समितियां बनाई गई हैं, जो लोकल बॉडी के स्तर पर समितियां बनी हैं, बकायदे उनका क्रियान्वयन करे, जो राज्यों ने अपने कानून बनाए हैं, और देखे कि वो ठीक ठाक काम कर रहे हैं या नहीं। एक और भी बात है, और वो कि जो हमारा पारंपरिक ज्ञान है उसके संरक्षण के लिए अलग से संगठन बनाए जाएंगे, आदिवासियों के बीच में संगठन बनाए जाएंगे, बकायदे उनके बीच में जाया जाएगा, उनको उसका सदस्य बनाया जाएगा, और उनको इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा कि आप इस ज्ञान को आगे बढ़ाइए, चाहे आप डॉक्यूमेंटेशन उसका करें, चाहे शोध करें, जो भी करें। तो उसके लिए अलग से समिति बनाए जाने का प्रावधान किया गया है। दोस्तों यहां तक ये दिया है कि केंद्र सरकार बकायदे उन पर्यावरणीय प्रभावों का आकलन कर सकेगी जिससे जैव विविधता को हानि पहुंच सकती है। जैसे मान लीजिए कि कोई उद्योग खोलना चाह रहा है, ठीक है, उद्योग के लिए उसको परमिशन मिल गई। अब वो उद्योग खोलेगा तो स्वाभाविक है कि अगर उसमें से धुआं निकलता है, उसमें से गंदा पानी निकलता है, या उद्योग को स्थापित करने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, कॉलोनी के लिए, रहने के लिए वो जंगलों को काटेगा तो उसका प्रभाव तो पर्यावरण पर पड़ेगा ही, पर्यावरण को क्षति होगी। तो केंद्र सरकार को यह अधिकार है कि बकायदे इससे क्या पर्यावरण की क्षति होगी उसका वह आकलन करे। और ये अलग से आपका टॉपिक है, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अलग से है, पूरा इंडिपेंडेंट है और आपके सिलेबस में भी मेंशन किया हुआ है, वो आप वहां जाकर के पढ़ेंगे। और फिर इसके लिए अलग से कोष बनाया गया है, फंड बनाया गया है, फिर जो भी उद्योग स्थापित करेगा आकलन के अनुसार उतना फंड, उतना पैसा उसे उस कोष में जमा करना होगा, ताकि जो पर्यावरण को क्षति हो रही है उसकी प्रतिपूर्ति उस धन से की जा सके। और साथ ही साथ देखिए, पर्यावरण का प्रभाव तो एक तरफ हो, दूसरी तरफ उसका मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि केवल पर्यावरण के प्रभाव का आकलन होगा, बल्कि मनुष्य के स्वास्थ्य पर जो उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा उसका भी बकायदे आकलन किया जाएगा। और सरकार कोशिश करेगी कि कैसे वो जो पड़ने वाला प्रभाव है उसे कम कर सके। तो अब आप देखिए कि कैसे छोटी छोटी चीजों को चारों तरफ से देख करके व्यवस्था की जा रही है कि हम अपनी जैव विविधता का उपयोग भी कर सकें, क्योंकि हमारा वो बहुत बड़ा रिसोर्स है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं, कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। और दूसरी तरफ हम इस तरीके से उपयोग करें कि उससे होने वाले नुकसान न्यूनतम हो सके। अगर हम उसे जीरो तक पहुंचा सकें तो फिर तो बात ही बिल्कुल अलग है। और दोस्तों, आखिरी बात कि यह जो अधिनियम है 2002 का अधिनियम, जैव विविधता के संरक्षण के मामले में, जैव विविधता है ना, मैं पर्यावरण की बात नहीं कर रहा, जैव विविधता, यहां स्पेशली जैव विविधता की बात कर रहे हैं, है ना, संरक्षण के मामले में क्या नीतियां बनेंगी, किस तरह से संस्थाओं का गठन होगा और जो वित्तीय अधिकार होंगे, वो सारे के सारे अधिकार केंद्र सरकार को प्रदान करता है। यानी कि जैव विविधता के मामले में समस्त अधिकार केंद्र सरकार के हाथ में होंगे, एक्ट में यह व्यवस्था कर दी गई है। इसका मतलब है, आप यूं कह लीजिए कि यह केंद्रीय सूची का विषय आप कह सकते हैं, केंद्र ही इसके बारे में फैसला करेगी। तो आप यहां भी ये बात देख सकते हैं कि जैव विविधता का प्रश्न, जैव विविधता के संरक्षण का प्रश्न वास्तव में कितना संवेदनशील प्रश्न है। तो दोस्तों, ये कुछ मुख्य प्रावधान थे 2002 के एक्ट के बारे में, और जितनी महत्वपूर्ण बातें हो सकती थी लगभग लगभग मैंने कवर करने की कोशिश की है। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि बेहतर होगा कि मेरे लेक्चर को सुनने के बाद इससे रिलेटेड टॉपिक को आप एक बार पढ़ लें, तो यह जो विषय टॉपिक है आपका बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, अब मैं आज के डेली ऑडियो लेक्चर को समाप्त करने की आप सबसे यहीं इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।